आज की बातचीत की शुरुआत ना एक काफी चौंकाने वाले आंकड़े से करते हैं। पता है, आज सुबह से ही साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर करीब 30 से 35 लाख रुपए की जो वित्तीय धोखाधड़ी है उसके रिपोर्ट्स आ चुकी हैं।
30-35 लाख?
और ये सिर्फ आज सुबह की बात है?
हाँ, सिर्फ आज सुबह की कॉल्स।
ये जानकारी हमें मिली एक साइबर विशेषज्ञ से हुई लंबी बातचीत से। इसमें ऑनलाइन स्कैम, ट्रू कॉलर की बातें, ईवीएम हैकिंग का सच, मोबाइल सिक्योरिटी, मतलब कई अहम मुद्दे शामिल थे।
जी,
तो सोचा कि इस जानकारी को थोड़ा खंगालते हैं, है ना? समझते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम सब मतलब ऑनलाइन दुनिया में थोड़े ज्यादा सावधान रह सकें।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए, अक्सर ना छोटी छोटी लगने वाली बातें ही बड़े जोखिम ले आती हैं। जैसे आजकल एक टास्क स्कैम बहुत चल रहा है।
टास्क स्कैम, ये क्या चीज है?
हाँ, इसमें जैसे आपको कहा जाएगा कि आप YouTube वीडियो लाइक कर दो या Google पर कोई अच्छा सा रिव्यू लिख दो, और उसके बदले आपको 50 रुपए या 200 रुपए मिलेंगे।
अच्छा, छोटे मोटे पैसे?
हाँ बिल्कुल, छोटी रकम। लेकिन होता क्या है कि ये जो पैसा है ये अक्सर किसी ऐसे फ्रॉड अकाउंट से आता है जो पहले से ही पुलिस की नजर में हो।
ओ।
तो अगर उस फ्रॉड अकाउंट पे कोई FIR हुई तो पुलिस जब जांच करती है तो उस अकाउंट से जहां जहां पैसे गए होते हैं उन सभी अकाउंट्स को फ्रीज कर सकती है।
अरे बाप रे, मतलब वो 200 रुपए पाने के चक्कर में अपना खुद का अकाउंट ब्लॉक हो सकता है?
हाँ हाँ बिल्कुल, भले ही आपने सीधे तौर पर कुछ गलत न किया हो तो ये 200 रुपए भी बहुत भारी पड़ सकते हैं।
ये तो बहुत डरावनी बात है। और ये तो सिर्फ छोटी रकम की बात हुई, जानकारी में तो ये भी था कि इसी तरह की जो बड़ी निवेश योजनाएं होती हैं उनके झांसे में आकर लोगों ने करोड़ों गंवाए हैं।
हाँ करोड़ों, एक केस में 17 करोड़, एक में 26 करोड़, ये सब सुनने में आया है।
और एक स्कैम में तो सिर्फ 10-10 हजार की ज्वाइनिंग फीस ले लेकर 3700 करोड़ रुपए जमा कर लिए थे।
है कि जल्दी पैसा बनाने का लालच कितना खतरनाक है। जैसे पहले होता था ना सोना दुगना करने वाली स्कीमें।
हाँ हाँ बिल्कुल,
अब वही चीजें साइबर स्पेस में नए नए रूप लेकर आ गई हैं। पर देखिए, बुनियादी नियम वही है, अगर कोई चीज सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है तो शायद वो सच है ही नहीं।
सही कहा, एकदम सही कहा। अच्छा, अब जरा मोबाइल सिक्योरिटी पर आते हैं। एक डर जो हम सबको कहीं ना कहीं रहता है, क्या कोई दूर बैठे बैठे ही हमारा फोन हैक कर सकता है, मतलब बिना हमारे कुछ किए?
देखिए, तकनीकी तौर पर ना ये लगभग नामुमकिन है। मतलब कोई चुपचाप बिना आपकी किसी गलती के आपका फोन रिमोटली हैक कर ले, ये बहुत बहुत मुश्किल है। ज्यादातर हैकिंग तभी होती है जब हम खुद कोई चूक कर देते हैं।
जैसे कि?
जैसे कोई अनजान लिंक आया, हमने क्लिक कर दिया, या कोई संदिग्ध सा ऐप डाउनलोड कर लिया, या अपनी कोई निजी जानकारी किसी गलत जगह शेयर कर दी। मतलब उपयोगकर्ता की भागीदारी के बिना हैकिंग बहुत मुश्किल है।
अच्छा चलो, ये सुनकर थोड़ी राहत मिली। अब एक ऐप जो लगभग हर कोई इस्तेमाल करता है, ट्रू कॉलर, क्या वो सुरक्षित है, उसमें भरोसा कर सकते हैं?
ट्रू कॉलर, देखिए वो नाम तो दिखाता है, ये बात सही है, पर वो ये वेरीफाई नहीं करता कि जो कॉल कर रहा है वो वाकई वही आदमी है।
मतलब
कोई भी अपने फोन में अपना नाम CBI ऑफिसर या बैंक मैनेजर सेव कर सकता है, ट्रू कॉलर तो वही दिखाएगा जो सेव किया गया है, तो धोखा हो सकता है।
हाँ ये तो है।
और दूसरी बात, ये ऐप काम करने के लिए आपके फोन से बहुत सारी परमिशन लेता है, आपके कॉन्टैक्ट्स, फोटो, फाइल सब, और पहले इसके डेटाबेस लीक होने की खबरें भी आ चुकी हैं।
ओह,
इसीलिए सरकार भी अपनी एक कॉलर आईडी सेवा लाने पर विचार कर रही है।
अच्छा, ये जरूरी जानकारी है।
और वो जो स्टाइलिश कीबोर्ड या फोन लॉन्चर ऐप होते हैं जिनसे फोन का लुक बदल जाता है, उनमें कोई खतरा है?
खतरा हो सकता है, बिल्कुल। कोई भी ऐप इंस्टॉल करने से पहले ना हमेशा उसकी परमिशन जरूर चेक करनी चाहिए। कई कीबोर्ड ऐप ऐसे होते हैं जो आप जो भी टाइप करते हैं उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, कीस्ट्रोक्स। हाँ, या माइक्रोफोन का एक्सेस ले सकते हैं। लॉन्चर ऐप भी कई बार जरूरत से ज्यादा परमिशन मांग लेते हैं, तो बेहतर यही है कि भरोसेमंद ऐप यूज करें और एक अच्छा एंटीवायरस या सिक्योरिटी ऐप से फोन स्कैन करते रहें।
परमिशन चेक करना बहुत जरूरी है।
हाँ।
अच्छा, अब एक थोड़ा अलग सवाल जो चुनावों के टाइम बहुत उठता है, ईवीएम।
जी,
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें।
जी,
क्या ये हैक हो सकती है?
ईवीएम, देखिए, ईवीएम मूल रूप से ना एक कैलकुलेटर जैसी स्टैंड अलोन मशीन है। उसमें कोई बाहरी कनेक्टिविटी नहीं होती, ना इंटरनेट, ना ब्लूटूथ, ना वाईफाई, कुछ नहीं।
ओके।
तो उसे हैक करने के लिए आपको फिजिकली उस मशीन तक पहुंचना होगा, और चुनाव की पूरी प्रक्रिया में इतने सारे चेक्स होते हैं, सीलिंग होती है, अलग अलग पार्टियों के एजेंट होते हैं।
हाँ, वो तो है।
और एक मशीन में वोट भी लिमिटेड होते हैं, करीब 1600। वोटिंग परसेंट भी पूरा 100% तो होता नहीं, शायद 50-60% होता है। तो एक मशीन से छेड़छाड़ करके पूरे चुनाव का नतीजा बदलना ये लगभग नामुमकिन है। हाँ, मशीन कभी खराब हो सकती है, जिसे मैलफंक्शन कहते हैं, पर वो हैकिंग नहीं है।
ठीक है, ये स्पष्टीकरण जरूरी था। मैलफंक्शन और हैकिंग अलग चीजें हैं। अब एक और प्रैक्टिकल सवाल, अगर किसी का फोन चोरी हो जाए तो क्या होता है उसका, कहा जाता है वो?
देखिए, अक्सर जो महंगे फोन होते हैं, खासकर आईफोन,
हाँ जी,
उनको अनलॉक करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो ज्यादातर पार्ट्स के लिए खोल दिए जाते हैं।
अच्छा, पुर्जे निकाल कर बेच देते हैं?
हाँ, एंड्रॉइड फोन शायद रीसेट करके बेचे जा सकते हो। इसीलिए अगर आप कोई सेकेंड हैंड फोन ले रहे हैं तो सरकार का एक पोर्टल है, sancharsathi.gov.in,
sancharsathi.gov.in।
जी, उस पर फोन का IMEI नंबर डालकर जरूर चेक कर लें कि कहीं वो चोरी का या ब्लैकलिस्टेड तो नहीं है। और अगर आपका फोन चोरी हो जाए तो इसी पोर्टल पर आप रिपोर्ट करके उसे ब्लॉक भी करवा सकते हैं।
ये बहुत काम की वेबसाइट है।
हाँ, बहुत। और सबसे जरूरी बात, सबसे अहम सलाह, अगर कभी भी, भगवान न करे, आपके साथ कोई ऑनलाइन पैसों की धोखाधड़ी होती है तो एक सेकंड भी मत गवाइए, तुरंत 1930 जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन है उस पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत करें।
तुरंत एक्शन लेना है।
बिल्कुल तुरंत, क्योंकि जानकारी यही बताती है कि अगर आप फॉरन रिपोर्ट करते हैं तो 90% मामलों में पैसे को रोका या वापस लाया जा सकता है, लेकिन अगर आपने हफ्ता भर भी देर कर दी तो फिर पैसे वापस मिलने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है।
90%, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। मतलब तुरंत रिपोर्ट करना सबसे जरूरी है।
सबसे जरूरी।
और ये जो घटनाएं हम सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं धोखाधड़ी की, इनसे सीखना भी बहुत प्रभावी होता है ना?
बिल्कुल,
हमें याद रहता है कि क्या गलती हुई थी और कैसे बचा जा सकता था।
बिल्कुल,
कहानियों से सबक जल्दी याद रहता है। और जाते जाते ना, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
हाँ, जरूर।
कभी सोचिएगा इस पर, जब कोई धोखेबाज आपके किसी बहुत करीबी दोस्त या रिश्तेदार का नाम और फोटो इस्तेमाल करके आपसे व्हाट्सएप पे या कहीं पैसे मांगता है, तो उसे ये कैसे पता चलता है कि आपका वो कौन सा खास दोस्त या रिश्तेदार है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिसकी मदद करने से आप शायद मना ही नहीं कर पाएंगे? ये जानकारी कि आपका सबसे भरोसेमंद कॉन्टैक्ट कौन है, ये उन तक पहुंचती कैसे, जरा सोचिएगा इस पर।
हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात।